समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दोस्तों, समाचार पत्रिका आज सवेरे के संक में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। मनोरंजन और जानकारियों भरी हमारी इस मुलाकात में होंगे देश और दुनिया के समाचार, जानेंगे महानगरों का हाल और बात करेंगे मौसम के मिजाज की भी। इतिहास में दर्ज कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र होगा जिनका रिश्ता है आज की तारीख से, और याद करेंगे कुछ उन जानी मानी हस्तियों को जिनका है आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि। आज आपका हम सफर हूं मैं मुनीश शर्मा, अपनी सहयोगी रेनू कटारिया के साथ। रेनू जी नमस्कार।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम मुनीश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड यस डियर लिसनर्स, एज मुनीश हैज ऑलरेडी इन्फॉर्मड यू, देयर इज लॉट्स दैट वी आर गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस हाफ एन आवर प्रोग्राम ऑफ आवर्स कॉल्ड आज सवेरे। सो लेट अस बिगिन विद द न्यूज फर्स्ट एंड देन गो ऑन टू द अदर सेगमेंट्स लेटर ऑन। मुनीश
जी, हाँ बिल्कुल, नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की राजकीय यात्रा पर इसराइल रवाना होंगे। श्री मोदी की ये दूसरी इसराइल यात्रा होगी। इस दौरान वो इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे, जिसमें भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान समेत कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी बातचीत करेंगे। बैठक में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। इसराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने हमारे विशेष संवाददाता को बताया है कि प्रधानमंत्री आज इसराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित करेंगे। उन्होंने ये भी बताया हमें कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता होंगे। श्री मोदी कल इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोंग से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों ही देशों के बीच गहरी और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी और अधिक मजबूत होगी।
The 10th meeting of India-Israel Joint Working Group JWG on counterterrorism was held in New Delhi yesterday. Joint Secretary Counterterrorism in the Ministry of External Affairs Dr. Vinod Bahare and Head of Bureau Strategic Affairs Division Ministry of Foreign Affairs of Israel Nadav Eskar led the delegations. The meeting underscored the importance of bilateral cooperation in countering terrorism, reflecting the spirit and breadth of the India-Israel strategic partnership. Both sides unequivocally and strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and reaffirmed the principle of zero tolerance towards terrorism.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति आज बुलढाणा जिले के शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला का उद्घाटन करेंगे।
इस मेले के दौरान लोगों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी प्रणालियों में मुफ्त परामर्श, स्वास्थ्य जांच और दवाइयां प्रदान की जाएगी। शेगांव के आनंद सागर के समीप विसावा मैदान में आयोजित इस चार दिवसीय आयोजन का उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती और कृषि वानिकी के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और किसानों के लिए नए आजीविका के अवसर पैदा करना है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं से इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने और पारंपरिक खेती के साथ साथ औषधीय पौधों पर आधारित कृषि में अवसरों को देखने की अपील की है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
The Union Cabinet has approved the proposal for alteration of name of state of Kerala as Keralam. Briefing media after the cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, After approval of the cabinet, the President of India will refer a bill, namely the Kerala Alteration of Name Bill 2026, to the State Legislative Assembly of Kerala for expressing its views. The minister said after receipt of the views of the State Legislative Assembly of Kerala, Government of India will take further action and the recommendation of the President will be obtained for introduction of the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for alteration of name of state in Parliament.
जब से भाषा के आधार पर राज्यों के डिलिमिटेशन हुए तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए। आज इस फैसले के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे और उनके निर्णय के आने के बाद में भारत सरकार इसमें अगला स्टेप लेगी।
Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has stressed 100% utilization of funds allocated to states for farmers' welfare by the 31st of next month. He said this while holding a virtual meeting in New Delhi with agriculture ministers and senior officials of several states, including Assam, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Haryana, to review the progress of the Rashtriya Krishi Vikas Yojana and the Krishi Unnati scheme. The minister said that timely and efficient utilization of central funds is essential to ensure that benefits reach farmers at the grassroots level.
भारत ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल पूर्ण और बगैर किसी शर्त के युद्ध विराम का आह्वान करने वाले मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस मसौदा प्रस्ताव को 107 देशों के पक्ष में, 12 के विपक्ष में और 51 के अनुपस्थित रहने के साथ पारित कर दिया।
एंड द लास्ट न्यूज दैट आई हैव इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट मुनीश। In the ICC Men's T20 Cricket World Cup, Pakistan's hopes of reaching the semi-final suffered a major blow after England clinched a dramatic 2-wicket victory in their Group 2 Super 8 match at Palikele International Cricket Stadium in Sri Lanka last night. Today, Sri Lanka will take on New Zealand in a Group 2 Super 8 match at R. Premadasa Stadium in Colombo at 7 p.m.
और आइए रुख करते हैं महानगरों की खबरों का और सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी के लिए 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र सक्रिय किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वैसे 46 केंद्र हो गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ये केंद्र प्रदूषण के विरूद्ध डेटा आधारित कार्रवाई को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो वर्ष 2025-26 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर कर दिया है 28 फरवरी। इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से पहले के बकाया कर पर ब्याज और दंड से पूरी छूट दी जाएगी। हालांकि इसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष तथा पिछले 5 वर्षों का मूल कर जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 5% विलंब शुल्क के साथ कर निपटान की सुविधा भी उपलब्ध है। निगम ने यह भी बताया कि योजना की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और उत्तर रेलवे ने आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए एक अनारक्षित होली स्पेशल रेलगाड़ियों के काफिले के संचालन का निर्णय लिया है। रेलवे ने बताया कि स्पेशल रेलगाड़ियां हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मथुरा जंक्शन और मथुरा जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक चलाई जाएंगी। रेलवे के अनुसार इन रेलगाड़ियों का संचालन इस महीने की 27 तारीख से लेकर अगले महीने की 3 तारीख तक होगा।
जी, और चलते हैं चेन्नई मेट्रो की तरफ। Kalakkad Mudunthurai Tiger Reserve in Tamil Nadu are having a growing challenge of sloth bears moving along forest fringes into areas close to human habitations. The problem has been reported from Amma Samudram, Kadayam, Papanasam and Thirukkurungudi forest ranges, where bears have begun to frequent hillocks just outside the notified forest boundary. R. Murugan, field director, said that many hillocks flocks have turned into semi-permanent shelters for the animals. Seasonal abundance of fruits such as mango, figs and jamun has created rich feeding grounds that draw the omnivorous bears out of the forest. Forest officials have identified 8 vulnerable villages in each affected range where residents regularly report sightings.
और बात मुंबई की दोस्तों, आप तो जानते हैं कि त्योहारी सीजन है और ऐसे में रेल यात्रा की जो मांग है वो बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए पश्चिमी रेलवे बांद्रा टर्मिनस और पालिताना के बीच एक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगा। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ये ट्रेन 28 फरवरी को सवेरे 11 बजे बांद्रा टर्मिनस से चलेगी और अगली तारीख में रात को 12:50 पर पालिताना पहुंच जाएगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09014 1 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजे पालिताना से चलेगी और अगली सुबह 5 बजे पहुंच जाएगी बांद्रा टर्मिनस। इसी तरह की कई और भी रेलगाड़ियां पश्चिमी रेलवे चला रहा है यात्रियों की सुविधा का ख्याल करते हुए, और ठहराव के समय और ट्रेनों की पूरी विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in।
और बेंगलोर बेंगलुरु से मेरे पास दो खबरें हैं मुनीश। द फर्स्ट वन दैट आई हैव फ्रॉम द बेंगलुरु मेट्रो इज The Karnataka government has launched an automatic property mutation service to simplify revenue department procedures. Earlier, mutations requiring a 7 or 15 day public notice period needed manual approval by the revenue inspector after the notice period, often causing delays as officials had to be physically present to provide digital signatures under the new scheme. Mutations will be automatically approved once the objection period ends. If objections are raised by the revenue inspector or the public within the stipulated time, the application will be kept on hold and transferred to the Tehsildar's court through the revenue court case management system for a decision. And the second news that I have from Bengaluru Metro is Minister for Large and Medium Industries M.B. Patil chaired meetings of 4 vision groups, aerospace and defence, machine tools, auto, EV and green energy to chart Karnataka's industrial growth roadmap. He said the state aims to emerge as the capital of defence electronics manufacturing with plans under consideration for a 200-acre defence electronics park and a 100-acre avionics and sensor park. Proposals for defence corridors and improved testing and common facility centres were also discussed. The minister assured that the government would positively consider the suggestions to strengthen Karnataka's industrial leadership.
Ji haan, a much needed say step which has been overdue. Aur ab baat hum karte Kolkata ki, jahan Agartala se Dhaka hote hue Kolkata ke liye yatri bus seva lambe antaral ke baad phir se shuru ho gayi hai. Ji haan, Tripura ke parivahan aur paryatan mantri Sushant Chaudhary tatha Tripura sadak parivahan nigam ke adhyaksh समर रॉय यात्रियों का औपचारिक स्वागत करने के लिए इस मौके पर मौजूद थे। परिवहन मंत्री चौधरी ने इस सेवा के पुनः शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। अधिकारियों ने कहा है कि बहुप्रतीक्षित अगरतला ढाका कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा के फिर से शुरू होने से सीमा पार व्यापार और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा।
जी, और लास्ट न्यूज मेरे पास है हैदराबाद मेट्रो से। Pushpendra Kumar Singh, principal advisor to TRAI, TRAI has unveiled a new rating framework for digital connectivity infrastructure designed to ensure superior indoor signal quality. This initiative targets hospitals, public buildings, government offices and residential complexes to provide the robust network stability essential for modern services like remote work, e-health, digital education and online banking. Under the scheme, buildings will receive ratings based on their digital infrastructure quality, with a 5-star rating signifying the highest standard of connectivity. Property developers and owners can adopt this framework voluntarily.
और दोस्तों, आज सवेरे में अब बात करेंगे महानगरों के मौसम की, ताकि यदि आप यात्रा कर रहे हैं एक से दूसरे शहर में तो आपको मौसम के मिजाज का रहे पता। यहां राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय चल सकती तेज हवाएं, वहीं आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रह सकता है 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज।
बात मुंबई की, जहां रहेगा आसमान साफ, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जा सकता है 34 डिग्री सेल्सियस।
और वहीं पर बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 19 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज।
जी, और कोलकाता में आज मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, ऐसा है अनुमान। अधिकतम तापमान जा सकता है 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडर लाइटनिंग। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 22 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस। And let's go to our next segment, Munish, which is the events that happened on this day in history.
जी हाँ, बिल्कुल। देश और दुनिया के इतिहास में 25 फरवरी किन वजहों से मशहूर रही, इस पर एक नजर। दरअसल 1921 से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी पर रूस ने कर लिया था कब्जा 25 फरवरी को।
और अगर मैं शुरुआत करूं इवेंट्स की मुनीश, तो आई विल बी गोइंग अ लिटिल बैक इनटू हिस्ट्री। आई विल बिगिन विद द ईयर 1836। ऑन दिस डे सैमुअल कोल्ट रिसीव्ड अ यूएस पेटेंट फॉर द कोल्ट रिवॉल्वर। आज ही के दिन इन द ईयर 1870 हायरम रोड्स रिवल्स बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन स्वॉन इनटू द यूएस सेनेट। On this day, that is 25th of February 1901, J.P. Morgan incorporated U.S. Steel, the world's first billion-dollar corporation.
जी हाँ, 1925 में जापान और पूर्व सोवियत संघ के बीच कायम हुए थे राजनयिक रिश्ते आज की तारीख को। और 1980 में ब्रिटेन ओलंपिक संघ ने अपनी सरकार के विरोध और दबाव के बावजूद उसी साल यानी 1980 की जुलाई में मॉस्को में होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल होने का फैसला किया था।
In 1947, on this day, the state of Prussia was officially abolished by the Allied Control Council. On 25th of February in the year 1960, the 14th Dalai Lama established the Tibetan government in exile in Dharamshala. And on the 25th of February 1988, India conducted the first successful test of the Prithvi surface-to-surface missile.
और दोस्तों 1986 में आज ही की तारीख को यानी 25 फरवरी को मारिया कोरोजोन एक्विनो के फिलीपींस की राष्ट्रपति बनने के साथ ही वहां खत्म हो गया था तानाशाह फर्दिनांड मार्कोस का शासन। और 1988 में यही थी वो तारीख दोस्तों जब सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण हुआ। और 2008 में फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन को 80वें ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार के लिए चुना गया था।
जी,
और अब हम याद करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी जानी मानी हस्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। तो शुरू करते हैं रेनू, आप बताइए कौन सी हस्ती आपको याद आ रही है।
मैं
आज की
जिस हस्ती के बारे में बात करने वाली हूँ मुनीश, वो हम सबके दिल के बहुत करीब हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जॉर्ज हैरिसन टुडे।
जॉर्ज हैरिसन, यस, अ लेजेंड एंड वन ऑफ द फेमस फोर बीटल्स।
यस यस, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। तो we are paying tributes to George Harrison today, who was an English musician, singer, songwriter, and music and film producer who achieved international fame as the lead guitarist of the Beatles. Sometimes called the Quiet Beatle, Harrison embraced Indian culture and helped broaden the scope of popular music through his incorporation of Indian instrumentation and Hindu-aligned spirituality in the Beatles' works. और अगर हम यहाँ पे इंडियन कल्चर और जॉर्ज हैरिसन की बात करते हैं तो हम उनके साथ रविशंकर जी को भी कहीं ना कहीं ऐड कर ही लेते हैं.
बिकॉज रविशंकर जी वॉज रिगार्डेड एज ए गुरु बाय द फोर बीटल ब्रदर्स.
यस एंड स्पेशली जॉर्ज हैरिसन. तो यहाँ पर जो हम सुनने वाले हैं वो है रविशंकर टीचिंग जॉर्ज हैरिसन हाउ टू प्ले द सितार इन द ईयर 1968 और वो ऋषिकेश के गंगा के बैंक पे बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर ये म्यूजिक बना रहे हैं.
जी हाँ, इनफैक्ट ऋषिकेश इज द प्लेस वेयर फोर बीटल्स स्पेंट
most of the times
yes. while in India.
Yes.
And that ashram still exists.
It does.
And if you are a Beatles fan, friends, you can visit that ashram and it's open for public now. And he spent some time in, adjoining cities like Dehradun also. And
I will be coming to that very soon, yes.
Yeah, there's a, yes, famous song which was though not released.
Yes.
But yes, it's a famous song by George
so
Harrison.
So before we go on to the other songs, let's listen into Ravi Shankar teaching George Harrison how to play the sitar.
Yes.
Yeah.
It is strange to see pop musicians with sitars. I was confused at first. It had so little to do with our classical music. When George Harrison came to me, I didn't know what to think. But I found he really wanted to learn. I never thought our meeting would cause such an explosion. That Indian music would suddenly appear on the pop scene. It's peculiar. But out of this, a real interest is growing.
Very true, very true. So, talking more about George Harrison, after the band's breakup in 1970, Harrison released the triple album All Things Must Pass, a critically acclaimed work that produces most successful hit singer My Sweet Lord and introduced his signature sound as a solo artist, the slide guitar. एंड मुनीश, आप देहरादून एक सॉन्ग है जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं अपने लिसनर्स को.
जी हाँ, बिल्कुल. देहरादून एक बड़ा प्यारा शहर है और उसके लिए बहुत अच्छी सड़क भी जो है वो तैयार.
सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉन्ग बट सो देहरादून इज अ रेयर अनरिलीज्ड अकूस्टिक सॉन्ग रिटन बाय जॉर्ज हैरिसन इन द स्प्रिंग ऑफ 1968 ड्यूरिंग द बीटल्स रिट्रीट इन ऋषिकेश इंडिया. The song serves as a nostalgic tribute to the town of Dehradun, featuring lyrics about the journey and the search for a spiritual life. Or not to mention, Munish, George Harrison's remains were cremated and the ashes were scattered according to Hindu tradition in a private ceremony in the Ganges and the Yamuna rivers in India. So let's listen into this beautiful song, Dehradun.
Quite interestingly, our friends, George Harrison also composed a very famous bhajan, Govindam Adi Krishnam, Twamham Bhajami, which is still, played in many of the ISKCON temples worldwide.
Yes.
और दोस्तों आज पुण्यतिथि है, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजे गए बोमी रेड्डी नागी रेड्डी साहब की। बी नागी रेड्डी के नाम से मशहूर भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के तौर पर इन्होंने चेन्नई में विजय वाहिनी स्टूडियो की स्थापना की थी, जो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो एक समय में माना जाता था। और इनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो पाताल भैरवी जो तेलुगु में बनी थी 1951 में, मिसम्मा जो 1955 में आई, माया बाजार 1957 में, और हिंदी फिल्मों की बात करें तो बड़ी ही जानी मानी फिल्म है राम और श्याम 1967 की, और श्रीमान श्रीमती 1982 में, और फिर जूली और स्वर्ग नरक तो आप जानते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी बड़ी ही कामयाब जो फिल्म रही थी हिंदी में जूली, उससे एक प्यारे से गीत के अंश।
दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, हो ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में।
Today is the birthday of Shahid Kapoor, who is an Indian actor who appears in Hindi films and cited in the media as one of the most attractive Indian celebrities. Kapoor maintains his popularity despite a fluctuating career trajectory and is the recipient of several awards, including 3 Filmfare Awards. And here we are going to talk about Kapoor playing a troubled businessman in Imtiaz Ali's romantic comedy Jab We Met, and listening to this beautiful song Aaoge Jab Tum.
Aaoge jab tum saajna angna phool khilenge,
और दोस्तों आज ही है जन्मदिन हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता शेरिंग फिंसो डेंगजोंग पाका। डैनी नाम से मशहूर रहे आप, और बहुत सी यादगार और बहुरंगी भूमिकाएं उन्होंने की और आज भी वो बराबर सक्रिय हैं। जन्म हुआ था सिक्किम में, तालीम हासिल की नैनीताल, और फिर उन्हें टीवी और फिल्म संस्थान में। हिंदी फिल्मों के दर्शक भले ही एक खलनायक के तौर पर उन्हें ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उससे भी पहले दरअसल वो एक बड़े ही प्यारे गायक हैं, चित्रकार हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं और बागवानी के शौकीन भी हैं। कहते हैं उनका ये जो मशहूर नाम है डैनी, ये जया भादुई का दिया हुआ था, जो पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के एक्टिंग कोर्स में उनकी सहपाठी थी। तो चलिए सुनते हैं उनकी वो जादुई अनोखी आवाज।
जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। एक बात याद रखना विजय चौहान, मेरा रास्ता काटने की कोशिश मत करना, समझा? अपना उसूल कहता है हर गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। वो देखो, हम दोनों की दोस्ती के पहले दिन पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा।
And not to mention, we are also remembering Sir Donald George Bradman today, often referred to as the Don, who was the Australian international cricketer, widely acknowledged as the greatest batsman of all time. And Bradman's career test batting average of 99.94 has been cited as the greatest achievement by any sportsman in any major sport. और आज याद कर लेते हैं दिव्या भारती को, who was an Indian film actress who starred in a number of commercially successful Hindi and Telugu motion pictures in the early 1990s, and known for her acting versatility, vivacity and beauty. She's regarded as one of the most popular and highest paid Indian actresses of her time. And she also worked in a few Hindi movies. Agar kuch naam le to Shola aur Shabnam, Deewana, which earned her the Filmfare Award for Best Female Debut. love you. So let's listen into this another beautiful song featured on Divya Bharati.
और साथियों अब दीजिए हमें इजाजत, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ इस शो में आज की रेनू कटारिया। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in। दीजिए आज्ञा,
नमस्कार।